ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सत्वं भृतो मे जठरे ननाथ सत्वं भृतो मे जठरे ननाथ कथं नु यस्योदरैतदासे कथं नु यस्योदरैतदासे अनुवाद तथा तात्पर्य श्री एसी भक्तिवेदांत संस्कृत पाठ की। आपने मेरे उदर में श्री भगवान के रूप में जन्म लिया है, हे भगवान, यह उस परमेश्वर के लिए किस प्रकार संभावना हो सका जिसके उदर में यह सारा दृश्य जगत स्थित है। इसका उत्तर होगा कि ऐसा संभव है क्योंकि कल्प के अंत में आप वटवृक्ष के एक पत्ती पर लेटे जाते हैं और एक छोटे से बालक की भांति अपने चरण कमल के अंगूठे को चूसते हैं। तात्पर्य, प्रलय के समय भगवान कभी कभी एक शिशु के रूप में प्रकट होते हैं जो प्रलयकारी जल पर तैरती बरगद की पत्ती पर लेटा रहता है। अथ देहावती कहती है, मुझ जैसी सामान्य स्त्री के उदर में आपका लेटे रहना उतना आश्चर्यजनक नहीं। आप तो बरगद की पत्ते पर लेट सकते हैं और शिशु की भांति प्रलय जल में तैरते रहते हैं क्योंकि यह अधिक आश्चर्यजनक नहीं है। अतः आप मेरे उदर में तो लेट ही सकते हैं। आप सिखाते हैं कि जो लोग इस संसार में संतान के इच्छुक होते हैं और जो विवाह करके संतान वाले परिवार का सुख उठाना चाहते हैं, उन्हें भगवान के समान ही शिशु प्राप्त हो सकता है। और सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि भगवान स्वयं अपना अंगूठा चूसते हैं। क्योंकि सारे ऋषि तथा भक्त अपनी सारी शक्ति तथा सारे कार्यकलाप से भगवान के चरण कमलों की सेवा में अर्पित करते हैं, उनके चरण कमलों में के अंगूठे में अवश्य ही कोई दिव्य आनंद होता है। भगवान अपना अंगूठा उस अमृत को चखने के लिए चूसते हैं जिसकी आकांक्षा भक्तगण सदा ही करते हैं। कभी कभी स्वयं भगवान को आश्चर्य होता है कि उनके भीतर कितना दिव्य आनंद समाया है। अतः अपनी शक्ति का स्वाद चखने के उद्देश्य से कभी कभी वे अपना स्वाद लेते हैं। भगवान चैतन्य साक्षात कृष्ण है किंतु वे एक भक्त के रूप में प्रकट होते हैं जिससे वे समस्त भक्तों में सर्वोपरि श्रीमती राधा रानी द्वारा पान किए जाने वाले मधुर रस का स्वाद पा सके। ओम ज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानांजना शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा, यहाँ जैसे हम लोग देखते हैं कि देहावती जो है उनके जो पुत्र है कपिल देव उनको संबोधित कर रही है, तो बता रहे कि जो है जैसे युग का अंत होता है तो भगवान क्या करते हैं, कभी कभी एक छोटे बच्चे का रूप धारण करते हैं नए शिशु के रूप में और एक वटवृक्ष पेड़ के पत्ते के ऊपर भगवान तैरते हैं और अपना पैर का अंगूठा चूसते हैं, हाथ का नहीं। तो अभी हमें मालूम होना चाहिए कि अभी यहाँ वो बता रही है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके लिए कुछ भी संभव है और आप जो है आपने मेरे उदर में जन्म लिया है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां आप रूपा जी तात्पर्य में बताते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति कृष्ण भक्ति में अगर कृष्ण को भगवान को अपने बच्चे के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, हाँ वो प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप लोग जानते कि नंद महाराज, यशोदा, देवकी, वसुदेव, उन्होंने जो है वो हर समय बताया जाता है कि कृष्ण भगवान कोई जो है अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करते हैं। तो यहां कुछ भी असंभव नहीं है। देव हमें यहां देवावती ये बता रहे कि जो है भगवान के लिए कुछ असंभव नहीं है। फिर दूसरी तरफ रूपा जी बताते हैं कि भगवान के भक्त हर समय भगवान के चरण का जो है उसमें आनंद लेते हैं। तो कभी कभी भगवान भी आस्वादन करना चाहते हैं कि मेरे चरण के अंगूठे में इतना क्या रस है। तो वास्तविक में देखते हैं कि भगवान के जो भी वृंदावन के जो लीलाएं हैं तो उनको मधुर लीलाएं कहा जाता है। तो कृष्ण भगवान के चार अधिक गुण है वृंदावन में, लीला माधुर्य, भक्ति माधुर्य, वेणु माधुर्य, रूप माधुर्य। तो यहां हम देखते हैं कि भगवान एक ऐसी लीला करके दिखा रहे कि भगवान अपना खुद का पैर का अंगूठा चूसते हैं। तो ऐसे उल्लेख आता है, हमारे आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि कभी कभी भक्त लोग भगवान से भी प्रश्न करते हैं, अरे भगवान आप अपना अंगूठा क्यों चूसते हैं। तो ऐसे एक उल्लेख आता है कि किसी एक बार एक किसी भक्त ने जो है भगवान से एक प्रश्न किया था कि क्या आप अपना खुद का अंगूठा क्यों चूसते हैं, आपको क्या जरूरी है अपना अंगूठा चूसना। तो भगवान ने कहा कि मेरे जो भक्त है उनको इसी में बहुत आनंद आता है, तो मैं भी सोचता हूं कि इसके अंदर क्या है तो मुझे भी कुछ आनंद मिले, है कि नहीं। तो कभी कभी अभी हम देखते कि कभी कृष्ण भगवान ये भी भूल जाते हैं कि उनका रूप कितना सुंदर है। जैसे द्वारका का एक उल्लेख आता है कि एक बार द्वारका में कृष्ण भगवान ने एक जो है अपनी एक परीक्षाएं देखी। तो जैसे परीक्षाएं उन्होंने देखा वो कहने लगे, अरे ये इतना सुंदर व्यक्ति कौन है। हालांकि स्वयं भगवान है, ब्रजलीला में भी एक उल्लेख आता है कि एक बार कृष्ण भगवान जो है किसी गोपी के घर गए थे और उस गोपी का घर का जो दरवाजा था उसमें एक ऐसा एक शीशा था कि जिसमें कृष्ण भगवान का ही जो है वो छवि दिख रही थी। तो जैसे कृष्ण भगवान ने खन लेके अपने मुंह में डाल ही रहे थे तो उन्होंने देखा, अरे वहां भी एक लड़का है। तो उन्होंने कहा, अरे तुम भी चोरी करने आए हो। तो उसने कहा, हाँ तुम भी चोरी करने आए हो। हाँ। तो कृष्ण ने कहा, चलो तुम भी थोड़ा माखन खा ले लो, किसी को बताना मत। तो जो शीशे में अपना जो ये देख रहे थे वो अपनी परीक्षाएं उसको वो ये कर रहे थे। आप देखेंगे कभी कभी चिड़िया होती है, गाड़ी के आईने में जाके वो जो है मिरर ग्लास को ये करती रहती है, ये कौन है, उसको टोकती रहती है। तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि हालांकि ऐसे बताया जाता है कि भगवान स्वयं सक्षम है सब कुछ जानने के लिए, सब कुछ जो है अपनी तरफ से कुछ सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन भगवान जो है अपने गुणों को जो है वो पूरी तरह खुद नहीं समझ सकते। तो यहां भगवान का एक ऐसे एक उल्लेख है जहां वो बता रही है। तो भागवतम में 12वें स्कंद में एक कथा आती है मार्कंडेय ऋषि की, तो इसको हम पहले संक्षिप्त में बताएंगे। तो ऐसे मार्कंडेय ऋषि जो है बताया जाता है कि वो जो है एक बार वहां गए थे बद्रिक आश्रम। तो वहां बद्रिक आश्रम में नर नारायण जो है स्वयं कृष्ण भगवान और जो है अर्जुन जी है, तो वहां उनकी भेंट हुई और जब ही उनका दर्शन हुआ तो उन्होंने कहा कि भगवान आपकी मैं माया देखना चाहता हूं। जैसे शिवजी ने भी जो है विष्णु भगवान को क्या कहा था, मैं आपका कौन सा रूप देखना चाहता हूं, हाँ मोहिनी मूर्ति का। तो इनके मन में भी एक इच्छा हुई कि भगवान आपकी माया क्या है वो हम देखना चाहते हैं। तो ऐसे हमें जिज्ञासा नहीं करना चाहिए क्योंकि उसका बहुत ही बड़ा रिएक्शन हो सकता है। तो उन्होंने कहा, जैसे मुझे याद है एक बार मैं ट्रेन से जा रहा था तो एक कोई संत जैसे व्यक्ति थे, उन्होंने भगवे कपड़े पहन के रखे थे और कुछ गलत मैगजीन पढ़ रहे थे। तो मैंने कहा, अरे भाई साहब आप क्या मैगजीन पढ़ रहे हैं, आपको मालूम है कि नहीं क्या पढ़ रहे आप। तो उसने कहा, भाई साहब जब तक एक व्यक्ति एक्सपीरियंस नहीं करता है तो कैसे पता चलेगा। तो मैंने पता नहीं मेरे मुंह में सीधा भक्ति में नया नया आया था, मैंने पूछा क्या विस्टा टेस्ट करके देखना पड़ता है क्या, उसका टेस्ट क्या होता है। तो बिल्कुल वो चौंक गया, वो कहने लगा, अरे क्या एग्जाम्पल दे रहे आप, तो हमें जो है वो टट्टी को स्वाद नहीं करना पड़ता कि वो तो बदबू है, गंदगी है। तो भौतिक जगत में हम देखते हैं कि लोग जो है आज इतने माया में व्यस्त है लेकिन वो नहीं जानते कि माया का अगर ये संग करेंगे उसका दुष्परिणाम कितना हो सकता है। तो यहां हालांकि मार्कंड ऋषि वो भी सिद्ध पुरुष है, वो भगवान की खास करके हमारे आचार्य बताते हैं कि मार्कंड ऋषि के अंदर एक जिज्ञासा थी कि भगवान का ये सृष्टि कैसे होता है, सृष्टि का प्रलय कैसे होता है, ये सब कुछ वो देखना चाहते हैं। तो उस वक्त जो है नर नारायण भगवान ने कहा चलो ठीक है तथास्तु। तो फिर ये जो है मार्कंड ऋषि अपने आश्रम में अपनी भक्ति कर रहे थे, और इस प्रकार एक दिन की बात है कि अचानक मार्कंड ऋषि ने क्या देखा कि जोर से तूफान आंधी बिजली कड़कने लग गई, और चारों ओर से क्या है कि चार समंदर जो आसमान को छू रहे, तो इस प्रकार जोर से प्रलय होने लग गए और जोर की वर्षा, इस प्रकार क्या हो गया कि पूरा विश्व जो है वो डूबने लग गया और सब कुछ डूब गया और ये भी तैरने लग गए उसमें। तो इनकी बुरी हालत हो गई, उन्होंने देखा कि वो पानी के लहर में यहां वहां पटके जा रहे, और बीच में उन्होंने समंदर में देखा बड़े बड़े मगरमच्छ वगैरह है, कभी कभी वो उनको खाने के लिए भी प्रयास कर रहे थे। तो इस प्रकार जो है मार्कंड ऋषि जो है ये समंदर का जो लहर होता है, अगर आप कभी समंदर में जाओगे मई जून में, तो उसमें जो लहर आते हैं वो कम से कम 10-10 मीटर के लहर आते हैं, जहां के जो बड़े बड़े नौकाएं होती है वो भी जो है ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होती रहती है, काफी लोगों को घायल हो जाते हैं। तो लेकिन मार्कंड ऋषि जो है वो तो बड़ा प्रलय था, तो उसमें वो किसी प्रकार जो है क्या हो रहा था वो अपनी जान बचाने का देख रहे थे। तो इस प्रकार समय जा रहा था, तो एक दिन अचानक उन्होंने देखा कि एक कोई द्वीप है और उस द्वीप में एक ही पेड़ है, और उस पेड़ में है जो है ये वट वृक्ष है, और उसमें एक पत्ते के ऊपर एक शिशु है। तो ये शिशु इतना सुंदर था, तो बताया जाए कि उन्होंने जब ये शिशु को देखा, बिल्कुल उनका नीला रंग है, बहुत ही सुंदर आंखें हैं, और उनके होठ, उनके दांत, उनके कर्ण कुंडल, उनके गले, उनके वस्त्र, ये सब कुछ देख के वो बड़े चकित हो गए। और इस प्रकार उन्होंने देखा कि बड़े आश्चर्य की बात है कि ये बच्चा जो है अपना ही जो है पैर का अंगूठा चूस रहा है। तो उन्होंने सोचा अरे ये क्या हो रहा है, तो थोड़ा निकट तो जाने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि बाकी जगह सब जगह अंधकार था और जहां वो शिशु था वहां बिल्कुल प्रकाश ही प्रकाश था। तो उनके मन में एक जिज्ञासा हुई, थोड़ा निकट जाके देखते हैं। तो जैसे वो निकट गए तो क्या हो गया, जैसे वो बच्चे ने सांस लिया तो उस सांस के साथ वो उनके शरीर के अंदर ही चले गए। कभी कभी आप लोग कभी झाम लेते तो मक्खी मुंह में अंदर आ जाती है, मच्छर आ जाता है। तो इस प्रकार क्या हो गया कि मार्कंड ऋषि उस बच्चे के सांस लेते नाक से पेट के अंदर चले गए। तो जैसे पेट के अंदर चले गए तो उन्होंने देखा अरे कुछ नया ब्रह्मांड है, उन्होंने कुछ नया प्रलय नहीं देखा, तो वहां उन्होंने पूरा अलग ही ब्रह्मांड देखा। और उस ब्रह्मांड में उन्होंने जो है जैसे सूरज चंद्रमा देवता स्वर्ग नरक सब अलग अलग लोग देखे, अलग अलग ब्रह्मांड, फिर पृथ्वी, अलग अलग प्रकार के वन, फिर नदियां समंदर, फिर वर्णाश्रम जहां कोई राजा राज्य कर रहा है। तो इस प्रकार उन्होंने पूरा भगवान का जो है एक एक विराट सृष्टि को देखा जिसमें जो है दुनिया चल रही है। तो इस प्रकार वो एक आश्चर्य प्रकट कर रहे थे, ये क्या हो रहा है क्या हो रहा है। तो वहां उन्होंने थोड़ा समय के लिए ये सब कुछ देखा कि वहां क्या हो रहा है। तो उसके पश्चात क्या हो गया कि अचानक क्या हो गया कि वो उनके शिशु का सांस छोड़ते ही उनके उधर से फिर नाक से बाहर आके फिर वही समंदर में गिर गए, फिर आके बाहर गिर गए। तो जैसे बाहर आके गिर गए फिर तैर रहे थे, तो उस वक्त जो है उन्होंने शिशु को देखा तो उनको पता चला अरे ये तो स्वयं भगवान है, भगवान की लीला चल रही है। तो उन्होंने सोचा अरे बहुत अच्छा मौका है कि अभी भगवान को जाके स्पर्श करने का, क्योंकि भगवान का दर्शन सबको नहीं होता है। अगर आप देखते जैसे सनातन गोस्वामी का एक वृंदावन का एक उल्लेख आता है कि सनातन गोस्वामी कभी कभी गोकुल जाया करते थे, गोकुल में रमण रहती है। तो एक दिन सनातन गोस्वामी ने क्या देखा कि यमुना जी के बगल में कृष्ण बलराम और बहुत सारे ग्वाल बाल बछड़ों को वहां चरा रहे रमन रेती में। तो सनातन गोस्वामी ने देखा अरे कितना अच्छा मौका है, यहां भगवान कृष्ण बलराम जी गाय चरा रहे। तो सनातन गोस्वामी तुरंत दौड़ने लग गए, उन्होंने सोचा अभी जाके हम कृष्ण को पकड़ ही लेंगे। तो जैसे वो भाग रहे थे और जैसे उन्होंने आके कृष्ण को स्पर्श करने का प्रयास किया, वो पूरा दृश्य अदृश्य हो गया, तो वहीं नीचे गिर गए, बड़े क्रंदन करने लग गए। तो यहां हम देखते हैं कि मार्कंड ऋषि जो है वो यानी उन्होंने प्रयास किया कि आके भगवान को स्पर्श करने का, वटपत्र शाही कृष्ण भगवान को, लेकिन क्या हो गया कि जो सारा जो दृश्य था वो अदृश्य हो गया, तो बड़े दुखी हो गए। अरे अरे भगवान, जैसे नारद मुनि के सामने से भगवान अदृश्य हो गए थे, तो बड़े संकोच करने लग गए। तो उस वक्त जो है फिर प्रलय धीरे धीरे खत्म हो गया और मार्कंड ऋषि ने देखा कि जहां वो पहले थे, जहां रहते थे, तो वहीं वो अपने जो है आश्रम में फिर से आ गए। और आश्रम में उन्होंने क्या किया, देखा कि उनका आश्रम जैसा है वहां है, फिर वो अपने भक्ति में लग गए। तो ये जो है वास्तविक में संक्षिप्त में हम देखते हैं कि ये भगवान ने ये मार्कंड ऋषि को ये दिखाया था, इसका उल्लेख आता है भागवतम में 12वें स्कंद में। तो यहां हम देखते हैं कि मार्कंड ऋषि उसमें एक उल्लेख करते हैं कि भगवान के चरण कमल जो है उसमें वो बताते हैं कि इसका सिर्फ दर्शन करने से मात्र इस भौतिक भवसार से एक व्यक्ति का जो है बेड़ा पार हो सकता है। तो हमें मालूम होना चाहिए, यहां जो है प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर एक व्यक्ति भगवान के चरण कमलों के ऊपर ध्यान करता है तो उससे हमें बहुत कुछ जो है लाभ हो सकता है। तो श्रीमद् भागवतम में जो है पहले स्कंद से लेकर 12वें स्कंद तक बहुत सारे श्लोक हैं, तो उसमें यही उल्लेख आता है कि भगवान के चरण कमलों के बारे में। तो भगवान के बहुत सारे भक्त हैं, उन्होंने भगवान के चरण कमल के बारे में उल्लेख किया है, जिसमें भीष्म देव है, कुंती महारानी, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, नारद मुनि, अम्बरीश महाराज, परीक्षित महाराज, शिव जी, ब्रह्मा जी हैं, यमराज जी, फिर देवताएं, हालांकि गोपियों ने भी भगवान के चरण कमल का उल्लेख किया है। तो आज हम प्रयास करेंगे संक्षिप्त में, और फिर लोचनदास ठाकुर उनके बारे में कुछ संक्षिप्त में बताएंगे। तो हमें मालूम होना चाहिए कि जैसे हम लोग भक्ति में आए हैं, तो सबसे पहले हमें, जैसे हम लोग मंगल आरती में जाते हैं तो गुरु अष्टकम गाते हैं, तो किसी को मालूम है कौन से अष्टकम में कौन सा श्लोक आता है कि जिसमें हमें अपने गुरु के चरण का वंदना 3 बार करना चाहिए? 8वां श्लोक आता है, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात न गति कुतोपि ध्यायांस्त्वाम तस्य यशस्त्री संध्याम। तो हमें क्या करना चाहिए कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि एक भक्त को क्या करना चाहिए, अपने गुरु का त्रिकाल संध्या जब वो करते हैं तो गुरु का स्मरण करना चाहिए, गायत्री के पश्चात गुरु को जो है स्मरण करते हुए उनको दंडवत करना चाहिए। तो पहले हमें जगते ही सबसे पहले गुरु का चरण का यानी क्या करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। तो फिर जैसे हमारे भागवतम में उल्लेख आता है जिसमें बताया था, वंदे हम श्री गुरु शीत पद कमलम श्री गुरुन वैष्णव अंश। तो ये जो प्रार्थना है इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हमारा पूरा जो संप्रदाय है इसमें हमारे आचार्य से लेके अंत तक राधा कृष्ण ललिता विशाखा सबको हम लोग क्या करते हैं, उनके चरण कमलों में हम अपना प्रार्थना संबोधित करते हैं। तो ये हमें प्रतिदिन प्रयास करना चाहिए कि इनको जो है याद करने का। तो आप देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम में उल्लेख आता है कि अगर एक व्यक्ति निरंतर भगवान के चरण कमल में अगर ध्यान करता है तो उसमें पहले स्कंद में जो है ये ऋषि वो लोग बताते हैं कि जब भी एक व्यक्ति यानी निरंतर भगवान को सेवा करता है और भगवान के चरणों में ध्यान करता है तो बताया था कि ये जो काल का चक्र है उसको कुछ नहीं कर सकता है। ऐसे भक्त को वो क्या कर सकता है कि काल चक्र का कुछ उसके ऊपर प्रभाव नहीं होगा, इस प्रकार वो जो है अंत में एक भगवत धाम भक्त पहुंच सकता है। तो नारद मुनि जो है वो स्वयं इनको व्यासदेव को अपना जो है साक्षात्कार बताते हैं। तो उसमें वो बताते हैं कि देखो जिस व्यक्ति ने इस भौतिक जगत को त्याग दिया है और जो व्यक्ति भगवान के भक्ति में लगे हैं, तो ऐसे व्यक्ति समझो भक्ति से गिर भी गए, कभी उनका भक्ति से पदभ्रष्ट भी हो गए, तो ऐसे व्यक्ति को कोई खतरा नहीं है। वो बताते हैं क्योंकि ऐसे व्यक्ति की भगवान अवश्य रक्षा करेंगे। भगवद गीता में भगवान बताते तेषाम समुद्धता मृत्यु संसार सागरात। तो बताते हैं लेकिन जो व्यक्ति ने भगवान की भक्ति में लगे नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए अगर उसने अपना अच्छा वर्णाश्रम का भी पालन किया हो तो उसका कुछ जो है मौका चांस नहीं कि उसको इस भौतिक जगत में बचने का। तो फिर व्यासदेव जी को आगे बताते हैं कि कभी कभी ये देखा जाता है कि भक्ति से भक्त पथभ्रष्ट हो जाते हैं, भौतिक कार्यों में लग जाते हैं, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। थोड़े समय के पश्चात जो है क्योंकि उसने भगवान के चरण कमल का चख लिया है, उसका उन्होंने आनंद स्वाद लिया है, तो व्यक्ति फिर से वो भगवत भक्ति में फिर से स्थित हो जाएगा। तो आगे जो है छठे जो है यानी इसमें आता अध्याय में उल्लेख आता है कि उसमें बताया जाता है कि जो कृष्ण भगवान है जिनके चरण कमल है वो पूरे जितने भी इस सृष्टि में जितने ये है तीर्थ है, तीर्थ कुरुवंती तीर्थानि, तो जितने भी तीर्थ है इस भौतिक जगत में, तो हमें मालूम होना चाहिए कि भारत में सब जगह तीर्थ ही तीर्थ है, लेकिन जो भी भगवान के भक्त होते हैं जैसे चैतन्य चरितामृत में भी उल्लेख आता है माधवेन्द्रपुरी को बताया जाता है कि उनको जो बताया था कि उनके चरण जो है वो तीर्थ के समान है, तो विदुर जी को भी जो है युधिष्ठिर महाराज जो कहते हैं कि आप जो है स्वयं तीर्थ है, तो भगवान के चरणों में सब तीर्थों का जो है निवास होता है। तो इस प्रकार एक व्यक्ति अगर भगवान के लीलाओं का उनके अलग अलग जो है लीलाओं का स्मरण करता है तो क्या होता है कि भगवान जो है उसके हृदय में स्थित हो जाते हैं और धीरे धीरे जो है उस व्यक्ति के जो है ये अनर्थ वो दूर हो जाते हैं और वो शुद्ध भक्ति में वो स्थित हो जाता है। तो कुंती महारानी जो है हालांकि वो भगवान को जो है लज्जित नहीं करना चाहती, कुंती महारानी का एक प्रार्थना में आता है नमो पंकज नाभाय नमो पंकज मालिने नमो पंकज नेताय नमो पंकज आंग्रहे। वो कुंती महारानी जो कृष्ण भगवान का जब भी दर्शन करती है उसको मालूम है कि भगवान का दर्शन चरणों से होता है, लेकिन भगवान वहां वो शर्मिंदा हो जाएंगे, इसलिए वो कहती है कि मैं आपको जो है उनके नाभि से वो भगवान का ऊपर दर्शन करके फिर चरण कमल में दर्शन का वो उल्लेख करती है। तो इस प्रकार हमें मालूम होना चाहिए कि जो भागवतम के जो पहला स्कंद और दूसरा स्कंद है ये भगवान के दो चरण के समान है। तो आगे कुंती महारानी बताती है कि जो व्यक्ति निरंतर भगवान के लीलाओं का श्रवण स्मरण करता है और औरों को बताता है भगवान की लीलाओं के बारे में और इसमें आनंद लेता है तो ऐसे व्यक्ति को अवश्य भगवान के चरण कमलों का जो आश्रय मिलता है। और इसके आश्रय मिलने से हम क्या कर सकते हैं अपने जन्म मृत्यु को रोक सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु जो है बताते हैं भक्ति लता बीज के बारे में, वो बताते हैं कि जब एक व्यक्ति भगवान के भक्तों का आश्रय लेते हैं और अपना हरि नाम लेते हैं उनसे, वो बताते हैं उसको अपने हृदय में आरोपण करना चाहिए और उसको निरंतर पानी यानी श्रवण और कीर्तन के द्वारा सिंचन करना चाहिए, तो ये भक्ति लता बीज वो क्या हो जाएगी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो गोलोक में जाके भगवान का चरण का आश्रय ले लेगी। तो इस प्रकार हमें मालूम होना चाहिए कि भगवान के चरण कमलों का काफी जगह उल्लेख आता है। फिर कृष्ण भगवान जब द्वारका प्रवेश करते हैं तो वहां भी उल्लेख आता है कि हालांकि भगवान का जो धाम है उसमें लक्ष्मियां बहुत सारी लक्ष्मियां है, हालांकि लक्ष्मियां इतना सारा भगवान की सेवाएं करती है, लेकिन जब तक बताया कि जितने भी देवता है बाकी लोग है वो भगवान के चरण का आश्रय नहीं लेते तो वो शुद्ध भक्ति का आस्वादन कर नहीं सकते। फिर आगे 12वें जो है अध्याय में उल्लेख आता है परीक्षित महाराज के जन्म के बारे में, तो वहां सुखदेव गोस्वामी युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं कि देखो कि जो भी व्यक्ति ने कृष्ण भगवान का चरण का आश्रय लिया है तो ऐसे व्यक्ति जो है हरेक जो है भौतिक जगत के काम वासना से मुक्त हो सकता है और उसको कृष्ण भगवान के शरण की प्राप्ति हो सकती है। जो द्वारका की रानियां वो भी बताती है कि देखो वो अपना साक्षात्कार बताती है कि सिर्फ कृष्ण भगवान के चरण की सेवा करने के पश्चात जो है जो सत्यभामा वगैरह अन्य रानियां है उन्होंने क्या किया कि भगवान को अपना जो है अपने आश्रित बना लिया, अपने बंधन में उनको बंदी बना लिया। हालांकि बड़े बड़े देवता लोग जो है या असुर लोग भी जो है भगवान को बंदी नहीं बना सकते, हालांकि इन रानियों ने क्या किया कि भगवान का सिर्फ चरण कमल का सेवा करके उन्होंने भगवान को क्या कर लिया अपना जो है बंदी कर लिया। और आगे उल्लेख आता है कि जब अर्जुन जो है वो ये जब ये हुआ युद्ध हुआ जब जिसमें यदुवंश का नाश हो गया तो उसके पश्चात कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया था कि आप के उनके रथों को जो है वहां ले जाने के लिए हस्तिनापुर, तो अर्जुन जो है वो उल्लेख करते हैं अर्जुन जो है वो कृष्ण भगवान के बारे में वो बताते क्योंकि वो बता रहे कि देखो कि महाभारत के युद्ध में एक ऐसी स्थिति थी, अर्जुन अपना एक साक्षात्कार बता रहे कि कभी कभी घोड़ों को प्यास लगती थी तो मुझे क्या करना पड़ता था रथ से उतर के घोड़ों को पानी पिलाना पड़ता था, तो उस वक्त मुझे कोई भी जो है बाण से मार सकता था, क्योंकि मैं सिर्फ घोड़ों का तभी खैर करता था। लेकिन भगवान की एक ऐसी योग माया थी कि कोई व्यक्ति मुझे जो है, हालांकि महाभारत के युद्ध में काफी बार मैंने घोड़ों को पानी पिलाया, तो उस वक्त भी जो है मुझे कोई कुछ कर नहीं पाया। तो वो भगवान जो है उनके बारे में वो बता रहे हैं कि सिर्फ उनका मैंने चरण का आश्रय लेके इस महाभारत जो है वो बताते कि ये एक बड़े सागर के समान था। तो उस युद्ध में मैंने क्या किया, अपना एक जीत जो है वो हासिल कर ली। तो ये अर्जुन जो है ये अपना एक साक्षात्कार बता रहे कि वो बताते कि मैं निरंतर कृष्ण भगवान का जो है चरण का याद करता था, इसलिए मैं इस जो है बड़े भवसागर से मैं बच गया। तो आगे कलयुग का जब आरंभ हुआ तो उसका भी यहां उसमें उल्लेख आता है कि कलयुग में जो है जो भक्त लोग भगवान के चरण कमल है जो बिल्कुल मधु के समान है, जैसे अभी भगवान अपना अंगूठा चूस रहे उसका ही उल्लेख आता है। तो यहां नैमिषारण्य के जो ऋषि हैं वो लोग बता रहे कि भगवान के चरण है वहां जो है मधु ही मधु है। अगर एक व्यक्ति भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेता है, उनको चखने का प्रयास करता है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है भौतिक जगत के अन्य जितने भी ग्रंथ है हाँ उनका श्रवण करने का कोई मतलब नहीं। तो आगे नैमिषारण्य के संत लोगों बताते हैं कि जिस व्यक्ति ने कृष्ण भगवान के लीलाओं का श्रवण करने में अपना पूरा जीवन डाला हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है जब वो भगवान के चरण कमलों का याद करता है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है वो बताते हैं कि अपने जीवन के अंत तक जो है कोई किसी प्रकार की दुविधा नहीं होगी। सुद्ध गोस्वामी आगे बताते हैं, जैसे वो महाराज परिषद के बारे में बताते हैं कि जिस व्यक्ति की बुद्धि भगवान के चरण कमलों में स्थित है, तो जो भगवान गरुड़ के ऊपर आरूढ़ होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को वो बताते हैं कि जो है कोई भी प्रकार की मृत्यु कुछ नहीं कर सकती। वो बताते हैं कि जैसे कि गंगा जी है, गंगा जी भगवान के चरण कमल से निकलती है और उसमें जो है भगवान के चरण के रज होते हैं, तुलसी के उसमें पत्र भी होते हैं, हालांकि गंगा जी बहती है जोर से समंदर की तरफ। तो इस प्रकार अगर एक व्यक्ति अपना ध्यान भगवान के चरणों में अगर केंद्रित करता है तो क्या होगा, तो एक व्यक्ति जो है वो कभी भी जो है वो भक्ति से पथभ्रष्ट नहीं होगा। तो इस प्रकार जो है श्रीमद् भागवतम में पहले स्कंद में हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे उल्लेख है जहां कृष्ण भगवान के चरण कमलों के बारे में उल्लेख आता है। फिर जो है परीक्षित महाराज वो अपना ये बता रहे निर्णय, अंतिम जीवन का निर्णय बताते हैं, जब भी उनको श्राप दिया गया था, तो परीक्षित महाराज बताते हैं कि देखो कि जैसे पांडवों ने जब भी देखा कि अभी कृष्ण भगवान चले गए, तो उन्होंने सोचा कि अभी इस भौतिक जगत में रहने का कोई ये नहीं, आनंद नहीं है, तो अभी हालांकि मुझे श्राप मिला है तो मैं गंगा जी के किनारे जाके वहां क्या करूंगा, कृष्ण भगवान के चरण कमलों में ध्यान करूंगा। तो इस प्रकार ध्यान करते करते जो भगवान सब लोगों को जो है वो मुक्ति प्रदान करते हैं, तो कृष्ण भगवान अवश्य जो है वो मेरी रक्षा करेंगे। तो इस प्रकार परीक्षित महाराज जो बताते हैं कि मैं गंगा जी के किनारे रहकर मैं निरंतर क्या करूंगा, भगवान के चरण कमलों का वो ध्यान करते हुए मैं क्या करूंगा, भगवान के लीलाओं का श्रवण करूंगा, और जो भी वो पक्षी है कोई भी प्रकार का जो पक्षी हो, तो वो पक्षी आके मुझे अभी भी ढस दे तो इससे मुझे कुछ जो है वो फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें भागवतम में भी फिर आगे उल्लेख आता कि किस प्रकार भगवान के चरण कमलों में ध्यान करना चाहिए। तो बताया था कि ध्यान करते हैं तो सबसे पहले भगवान के चरण कमलों से ध्यान करना चाहिए, दूसरे स्कंद में उल्लेख आता है। बताया था कि सबसे पहले एक व्यक्ति को भगवान के चरण कमल है जैसे नाखून है उससे वहां से ध्यान आरंभ करना चाहिए, फिर आगे धीरे धीरे उनके वक्षस्थल से लेके उनकी भुजाओं को देख के गले से लेके, फिर अंत में एक व्यक्ति को भगवान का जो हसमुख चेहरा है उसको देखना चाहिए। तो इस प्रकार जब एक व्यक्ति निरंतर भगवान का ध्यान करता है, भगवान के अलग अलग अंगों का, तो फिर एक व्यक्ति की जो बुद्धि है वो शुद्ध हो जाती है। तो यहां उल्लेख आता है कि इस प्रकार अगर एक व्यक्ति अगर ध्यान करेगा तो उसकी बुद्धि जो है वो शुद्ध हो जाती है। फिर आगे उल्लेख आता है कि जो लोग निरंतर भगवान के लीलाओं का श्रवण का पान करते हैं और भक्तों का संग करते हैं, तो बताया जाता है कि अपने जीवन में जो भी अनर्थ है भौतिक भोग करने का, तो वो जितने भी अनर्थ है वो नाश हो जाते हैं, और इस प्रकार हमारा मन जो है वो भगवान के चरण कमल में स्थित हो जाता है। अगर आप देखेंगे कि भगवान के खास करके राधा रानी, कृष्ण भगवान और चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, इनके हाथ और पैर में कितने चिन्ह है, किसी को मालूम है? कोई बता सकते हैं टोटल कितने चिन्हों का उल्लेख है? नहीं नहीं नहीं, टोटल ऑल टुगेदर, टोटल दो हाथों में दो पैरों में ऑल टुगेदर कितने चिन्ह है? 27। कितने? 27 चिन्हों का उल्लेख आता है। तो उसमें जो है अलग अलग चिन्हों का जो है हमें अलग अलग लाभ बताया जाता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ आपने चाहे भगवान के पैर के ऊपर ध्यान किया, लेकिन भगवान के पैर में और हाथों में जो चिन्ह है तो अलग अलग प्रकार के चिन्ह बताए जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मछली है, तो मछली का ऐसे उल्लेख आता है कि मछली वो एक जगह स्थित नहीं रहती है। अगर आप देखते हैं कि समंदर में मछली हालांकि सोती है लेकिन उसके आंख भी खुले रहते हैं, क्योंकि हर समय खतरा रहता है। तो मछली जो है एक जगह स्थिर नहीं रहती, लेकिन बताया जाता है कि लेकिन एक व्यक्ति भगवान का जब आश्रय लेता है तो जो अभी भौतिक जगत में अपना मन अस्थिर है तो वो मन भी जो है वो स्थिर हो जाता है। इसलिए वो एक उसमें मछली का एक चिन्ह दिखाया है। तो ऐसे बहुत सारे चिन्ह है जिसमें उसके अलग अलग जो है उल्लेख बताते हैं। फिर आगे सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि ये हमारा जो शरीर है, हालांकि हम इस शरीर में जी रहे, अंग्रेजी में कहते हैं लिविंग डेड, हालांकि एक मनुष्य जी रहा है लेकिन वह मृत्यु मरा हुआ आदमी जी रहा है। तो सुखदेव गोस्वामी क्या बताते हैं कि एक मरा हुआ जीवित व्यक्ति उसको कैसे कहते हैं? वो कहते हैं अगर एक व्यक्ति अपने कानों से भगवान की लीलाओं का श्रवण नहीं करते और भक्तों का अगर वो संग नहीं करते तो उसका शरीर एक मृत शरीर के समान है। जैसे एक पेड़ है वो जी रहा है, लेकिन पेड़ कैसे भोजन खाता है कोई बता सकता है? पेड़ को अपने पैर, उसके जो पैर क्या है वो जड़ है, उसके पैर है, तो उसको अपने पैर से खाना पड़ता है। आजकल आप देखते हैं कोई हॉस्पिटल में बीमार होकर एडमिट हो जाता है, अगर उसको माउथ कैंसर हो गया है उसको गले में एक छेद करके एक नाली से भोजन डालते हैं कि नहीं, मुंह से नहीं खा सकता। कभी कभी प्रभुपाद जी बताते हैं कि कोई कोई ऐसी दवा होती है वो हमें नीचे हमारे शरीर के छेद है उसमें से शरीर में डालना पड़ता है। तो यहां वो बताते हैं कि अगर एक व्यक्ति भक्तों का संग नहीं करता है या भगवान के लीलाओं का श्रवण नहीं करता है तो ऐसे व्यक्ति क्या है, वो मरा हुआ व्यक्ति है। अगर एक व्यक्ति भगवान के चरणों में तुलसी को जो है रखा है, अगर उसका अगर खुशबू नहीं लेता है तो वो व्यक्ति भी जो है उसका भी शरीर जो है, हालांकि वो सांस ले रहा है, जैसे एक लोहार के वो दुकान में गुब्बारा होता है वो भी सांस लेता है, वो भी बताते कि उसके समान है। सुखदेव गोस्वामी वो बताते कि इस प्रकार जो है ऐसे व्यक्ति का जीना कोई जीना नहीं है क्योंकि वो गुब्बारा जी रहा है। फिर पुरुष सूक्त का उल्लेख आता है इसमें दूसरे स्कंद में, तो उसमें उल्लेख आता है कि ये जितने भी 14 ब्रह्मांड है तो ये भगवान के चरण कमल में आश्रित है। तो जब ये हम जो है इस भौतिक ब्रह्मांड में कहीं भी जाएंगे तो कहीं हमारा रक्षा नहीं होगा, लेकिन एकमात्र हम यहां भगवान के चरण कमल में ये करेंगे, आश्रय लेंगे, तो हमारा पूरी प्रकार से जो है आश्रय हो जाएगा। तो इस प्रकार ये पहले स्कंद दूसरे स्कंद का आपको उल्लेख किया। तो हमें मालूम होना चाहिए कि ऐसे भागवतम में अगर हम पढ़ते जाएंगे तो हरेक स्कंद में जो है भगवान के चरण कमल का ये उल्लेख आता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति को अगर घर बांधना है तो कहां से चालू करना पड़ता है? फाउंडेशन। तो भगवान के दो चरण कमल हमें मालूम होना चाहिए, वो किसके समान है? फाउंडेशन के समान है। तो फिर आगे विदुर जी का मैत्रेय, उनका भी उल्लेख आता है, तो विदुर और उद्धव का उल्लेख आता है, उसमें भी वो भगवान के चरण कमल का बात करते हैं। फिर उसके पश्चात अगर हम देखते भागवतम में, जैसे इनका उल्लेख आता है जो राजा अम्बरीश महाराज से, अम्बरीश महाराज का उल्लेख आता है, स वै मन कृष्ण पदारविंदयोर वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिशु। तो सबसे पहले अम्बरीश महाराज क्या करते थे? स वै मन कृष्ण पदारविंदयोर, सबसे पहले अपने मन को कहां लगाते थे? भगवान के चरण कमल में। तो ये हमें मालूम होना चाहिए। जैसे शास्त्रों में भी उल्लेख आता है कि जब एक व्यक्ति जब बिस्तर से उठता है तो सबसे पहले उसको भूमि देवी को प्रार्थना करना चाहिए, भूमि देवी को वंदना करना चाहिए। तो इस प्रकार हमें मालूम होना चाहिए कि जब तक हम भगवान का चरण का आश्रय नहीं लेते तो हमारा जो है कोई आगे उपाय नहीं है। तो यहां अमृत महाराज का उल्लेख के बाद में आपको जैसे देवताओं का उल्लेख आता है, देवताओं का दशम स्कंद में उल्लेख आता है कि देवता लोग भगवान जो है देवकी के गर्भ में वहां वो भगवान की स्तुति कर रहे, वो कहते हैं कि देखो हम लोग आपके भगवान के चरण कमल में आपने हमने आपके चरणों में आश्रय लिया है। ये है वो बताते कि आपके चरण जो है वो एक नाव के समान है। तो एक व्यक्ति को अगर समंदर पार करना है तो उसको क्या करना पड़ता है, नाव का आश्रय लेना पड़ता है। और वो बताते कि जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों का आश्रय नहीं लिया है तो उस व्यक्ति ने एक पत्थर का नाव का आश्रय लिया है। किसका आश्रय लिया है, पत्थर का नाव। अगर आप पत्थर की कितनी भी बढ़िया नाव बना दो उसमें बैठते ही आप क्या हो जाओगे, डूब जाओगे। हाँ, ये देवता लोग अपना वो साक्षात्कार बता रहे, वो बता रहे इस प्रकार जितने भी देवता है ऋषिगण है वो बताते कि आपका सिर्फ चरण का आश्रय लेके, वो बताते कि हमें जो समंदर कैसे होता है, वो बताते कि हमें ये भवसागर है, वो बताते एक गाय के बछड़े के खुर के समान नजर आता है। वो बताते कि ये भवसागर भौतिक जगत का जो सागर है ये गाय के बछड़े के समान है। अगर आप देखेंगे 50 साल पहले एक कंप्यूटर कितना बड़ा होता था, किसको मालूम है, 50 साल पहले एक कंप्यूटर एक घर जितना बड़ा होता था। 50 साल पहले कंप्यूटर जो है बहुत एक घर जितना जगह लगता था उसको, लेकिन आजकल वही कंप्यूटर जो है आपके हाथ में बैठ सकता है इतना सा। तो इस प्रकार जो है तो हमें मालूम होना चाहिए कि जब भी भगवान का हम चरणों का आश्रय लेते हैं तो ये भौतिक जगत जो हमारे लिए एक गाय के बछड़े के खुर के समान होगा। फिर ब्रह्मा जी भी अपने प्रार्थना में क्या बताते, ये भी बहुत ही जो है प्रसिद्ध श्लोक है, उसमें संसत ये पाद पलम प्लम महत्पाद पुण्य यशो मुरारे भवामुद्र वत्स पाद परम पदम पदम यद विपदम न तेषाम। तो ब्रह्मा जी क्या बताते कि जिस व्यक्ति ने भगवान का चरण आश्रय के लिए किया है जो है एक नाव के समान है। भगवान का जो नाम है मुरारी, तो जिन्होंने मूर नाम के एक राक्षस का वध किया है, तो भगवान का चरण जो है वो बताते कि ये गाय के बछड़े के खुर के समान है। अगर एक व्यक्ति भगवान के चरण का आश्रय लेता है तो वो व्यक्ति इस भवसागर को वो पार कर सकता है। समय की कमी है तो यहां इसको अंत करते हैं। लास्ट में आप लोगों को गोपियों के बारे में बताते हैं, कोई बता सकता है कि गोपियों का कौन सा श्लोक है? आप लोग तो रटते रहते एक एक महीना गोपी गीत। आप लोग जो है जब भी ये होता है कार्तिक मास में एक महीना गोपी गीत गाते हैं कि नहीं, कम से कम ये श्लोक मालूम होना चाहिए। हाँ, प्रणत कामदम, किसी को मालूम है श्लोक, कोई बोल सकता है? प्रणत कामदम पद्मचार्जितम धरणी मंडनम देहम आप्तितम चरण पंकजम संततम चते रमण स्तन चनेश अर्पयादि हम। अभी गोपियां क्या बता रहे कि आपके चरण जो है जो ब्रह्मा जी अन्य देवता लोग वो भी जो है उनकी इच्छाओं को जो पूरा कर सकते हैं। और वो क्या, भूमि में एक जो है एक ऑर्नामेंट, भूमि के लिए एक प्रकार के वो जो है शोभा है ये भूमि देवी का। जो भूमि देवी में हम देखते हैं कि भगवान जब ये करते थे वृंदावन में भ्रमण करते थे तो बताया था कि भगवान के चरण कमलों का चिन्ह उसमें उग के आता था। जैसे वो अक्रूर जी आए थे, अक्रूर ने क्या देखा, सबसे पहले भगवान के चरण के कमल, उनके जो फुट इम्प्रिंट्स कहते हैं, तो उनको उन्होंने देखा था। तो बताते कि भूमि देवी के ऊपर एक समान एक प्रकार के सजावट के समान है। तो ये जो है किसी भी प्रकार के दुविधा में ये आपके चरण कमल को अगर एक व्यक्ति ध्यान करता है तो एक व्यक्ति का जितना भी चिंता है, गोपियां कहती है कि एक व्यक्ति की जितनी भी चिंता है उस चिंता को नाश कर सकता है। वो गोपियां कहती है कि आप हमारे हृदय पर छाती के ऊपर आपके चरण कमल को रख दो। तो आज जो है जैसे लोचनदास ठाकुर, उनका तिरुभाव दिवस है, तो लोचनदास ठाकुर जो है संक्षिप्त में उनका जीवन चरित्र उल्लेख आता है कि उनका जो है जो जन्म हुआ था एक गांव है पश्चिम बंगाल में गौड़ देश में कार ग्राम करके, तो वहां उनका जन्म 2523 में हुआ था लोचनदास ठाकुर। तो तो जैसे वो बताया जाता है कि एक जो है जो परिवार होता है वैद्य परिवार, तो उस समय जो है जैसे मुरारी गुप्ता वो भी वैद्य परिवार से थे, तो उनका जो है एक वैद्य परिवार में कटवा जो है जो डिस्ट्रिक्ट है वहां कोरग्राम नाम के गांव में उनका जन्म हुआ था। उनका पिताजी का नाम था कमलाकर और माताजी का नाम था सारानंदी। और आगे जो है हम देखते हैं कि लोचनदास ठाकुर जो है नरहरि सरकार के जो है वो शिष्य बने। तो बताया जाता है कि बचपन में जो है वो बचपन से ही भगवान के भक्ति में बहुत ही जो है मग्न रहते थे। पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, अपने बच्चों की शादी जो है वो बचपन में कर देते थे, शिशु बाल विवाह। तो क्या हो गया कि इनकी शादी 5-7 साल में हुई थी। अगर इनकी 7 साल की आयु तो लड़की की आयु कितनी होगी, 5 साल। तो जो खेलते रहते बच्चे उनको क्या मालूम है शादी क्या हो रही है, तो उनको बिठा दिया गया, शादी हो गई। तो जैसे शादी होती थी तो लड़का अपने पिताजी के घर में रहता था, लड़की अपने माँ के घर जाती थी। तो लड़की कभी कभी बीच में आती थी तो उसको कुछ उसकी माँ कहती थी तुम्हारा पति है इसको कुछ खिलाओ पानी पिलाओ। तो लेकिन क्या हो गया कि जैसे इनका शादी हो गया तो ये श्रीखंड गए। कहाँ गए, श्रीखंड अपने गुरुजी के पास पढ़ाई करने के लिए। तो काफी समय तक वहां अपने गुरुजी के पास नरहरि सरकार उनके पास पढ़ते थे, तो वहां काफी वैष्णव का संग मिलता था। तो अपने पत्नी शादी सब कुछ भूल गए, अपने घर को ही भूल गए। तो वहां उनकी पत्नी बड़ी हो गई, उनके माता पिता कहने लगे अरे इसका पति अभी लौट के नहीं आया इसको ले जाने के लिए। तो फिर उन्होंने जाके उनके माता पिता से कहा अरे किधर है तुम्हारा लड़का, शादी किया उसको मालूम नहीं कि अभी अपनी लड़की को पत्नी को अपने पास रखना चाहिए। तो उन्होंने कहा बताओ कहां उसको छुपा के रखा है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं वो अपने गुरुजी के वहां पढ़ने के। फिर लड़की के माता पिता जो है वहां श्रीखंड गए, तो वहां उन्होंने जाके नरहरि सरकार उनके गुरुजी से कहा देखो जी इसकी शादी हुई है, ये भुलक्कड़ है अपने पत्नी को भूल गया है, अभी आप उसको कहो घर जाके अपना जो है गृहस्थी संभाले। तो गुरुजी ने उनको बुलाया, कहा बेटा देखो अभी आपको अपने घर जाना पड़ेगा और आपको जाके अपना फिर से घर से परिवार वो संभालना पड़ेगा। तो बड़े दुखी हो गए क्योंकि गुरु की आज्ञा जो है उसको हम ये नहीं कर सकते। तो गुरु के कहने के अनुसार उन्होंने क्या कर दिया, श्रीखंड से फिर वो अपने पत्नी के घर वहां जा रहे थे। तो अभी आप समझो एक 20 साल के बाद एक व्यक्ति कहीं गांव जाता है, आजकल अभी वृंदावन भी परिवर्तित हो रहा है, कोई व्यक्ति छठी करह से आएगा उसको लगेगा नहीं कि वृंदावन में जा रहा हूं, उसको लगेगा हम वृंदावन में आएगा कहां दूसरी जगह आए। तो जैसे ये अपने घर जा रहे थे पत्नी के घर ससुराल, तो मायके क्या कहते पता नहीं, मुझे भी मालूम नहीं क्या कहते, पत्नी के घर जाना है तो हाँ ससुराल ठीक है ओके। तो जैसे वो ससुराल वहां गए तो वहां तो एक जो है स्त्री पानी निकाल रही थी कुएं से। तो उन्होंने उनको कहा अरे माता जी यहाँ जो है फलाने परिवार को जानते हैं उनका घर किधर है, तो उसने बता दिया ऐसे जाके गली में कैसे जाने का। तो जैसे वो घर उसके पत्नी के घर गए तो उसके पत्नी के माता पिता बड़े प्रसन्न हो गए, उन्होंने उसको बिठाया कहा कि आपकी जो है पत्नी अभी आ रही पानी लेने के लिए गई है। तो जैसे उसकी पत्नी वहां पानी लेके आई तो हालांकि उन्होंने जो स्त्री को पहले देखा था उसको समझा था कि ये कोई गांव की स्त्री है, तो उसको उन्होंने संबोधित किया था माँ करके माताजी करके, जैसे चाणक्य पंडित कहते हैं मातृवत परदारेषु, हर एक स्त्री को एक ब्रह्मचारी को जो है माँ के रूप में देखना चाहिए। तो उस वक्त क्या हो गया कि जैसे उन्होंने उस स्त्री को देखा उसके माता पिता ने कहा यही तुम्हारी पत्नी, वो बड़े अचंभित हो गए। अरे उन्होंने कहा अरे मैंने तो इनको माताजी बोल दिया, तो अभी ये तो मेरे लिए पूजनीय है माता के समान है। जैसे आप लोग जानते हैं अर्जुन जब इस स्वर्ग में गए थे वहां उर्वशी को भी उन्होंने कहा माताजी, उर्वशी ने कहा अरे मूर्ख क्या तुमको मैं माताजी लगती हूँ। तो आजकल भी आप किसी को कहीं गलती से कहीं बाहर माताजी कहोगे तो आपको एकदम आंख फाड़ के लाल आंख से देखेंगे, ए क्या कह रहा है अभी हमारा शादी भी नहीं हुआ तुम माताजी कह रहे हैं। तो लेकिन उस समय एक ऐसी ये थी सभ्यता थी कि उन्होंने कहा कि देखो जी अभी हमने इसको माँ के नाम से संबोधित किया है तो अभी हम अपना डिसीजन चेंज नहीं कर सकते, हालांकि आप मुझे इसके साथ पति पत्नी के इसमें भी रखेंगे तो लेकिन मैं इसको क्या करूंगा माँ के रूप से इसकी मैं सेवा करूंगा। हालांकि वृंदावन में भी कृष्ण भगवान जो है आप जानते हैं कि महालक्ष्मी जी की सेवा कर रहे एक पुत्र के रूप में, कोई जानता है कहां कृष्ण भगवान जो है महालक्ष्मी जी की सेवा कर रहे पुत्र के रूप में। अरे आप लोग वृंदावन में रहते मालूम होना चाहिए। अरे बेलवन में, बेलवन में हम देखते हैं, अभी अभी तो हुआ है यानी लक्ष्मी जी का बड़ा ये चल रहा था दिसंबर का, कौन सा मेला कहते हैं उसको, हाँ पौष मेला, जाना चाहिए। लाखों में वहां आते लोग, लाखों में पौष मेला में। तो वहां कृष्ण भगवान स्वयं लक्ष्मी जी को एक जो है पुत्र के रूप में सेवा दे रहे हैं। तो यहाँ उन्होंने कहा कि देखो अभी मैंने एक बार उनको माता कह दिया तो वो आदर मैं अपने हृदय में हर समय के लिए रखूंगा। तो फिर उनके पत्नी ने जाके माता पिता से कहा, अरे ये तो मेरे तरफ ध्यान भी नहीं देते, मुझे माता जी कहते। तो उसके जो है ससुराल के माता पिता थे बड़े दुखी हो गए, अरे मूर्ख निकल जा तू अपने गुरु के पास। तो बेचारे को उन्होंने कहा, ऐसे नहीं कि वो कोई एक शॉर्टकट देख रहे थे, ऐसे नहीं था, लेकिन जो है उन्होंने पहले ही अपने मन में तय कर लिया था। तो जैसे उन्होंने कहा कि आप लौट के अपने गुरु जी के आश्रम में चले जाओ, तो फिर उन्होंने उनका आशीर्वाद लेके फिर जो है वो अपने गुरु जी के पास आए नरहरि सरकार, वहां फिर वो निवास करने लगे। तो बताया था कि नरहरि सरकार जो है उन्होंने जो है उनको सब ग्रंथों का वगैरह अध्ययन उनको सिखाया, फिर उन्होंने उनको जो है वैष्णव गीत वगैरह कैसे रचना करना चाहिए उनके बारे में वगैरह बताया। तो उसके पश्चात उन्होंने उनके गुरु ने उनको आदेश दिया था कि देखो आप क्या करो कि चैतन्य महाप्रभु का पूरा जीवन चरित्र निकालो, लिख के निकालो। तो बताया था कि उन्होंने जो है जो सबसे पहला जो ग्रंथ लिखा था ये है, उन्होंने लिखा था लोचनदास ठाकुर, तो इसको उन्होंने नाम दिया चैतन्य मंगल। इनके पश्चात बताया था वृंदावन दास ठाकुर जो है तो उन्होंने भी जो है क्या लिखा है, यही चैतन्य मंगल ही लिखा था, लेकिन उसको बाद में हमारे आचार्य ने नाम लिख दिया चैतन्य भागवत, क्योंकि वो पूरा जो है वो व्यासदेव जी के जो है अवतार है। कौन व्यासदेव जी का अवतार है? वृंदावन दास ठाकुर, क्योंकि उन्होंने जो चरित्र का रचना किया है तो उसका नाम जो भागवत ही होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि उनके ग्रंथ का नाम रख दिया चैतन्य भागवत और इनका ग्रंथ का नाम जो है वो चैतन्य मंगल ही रहा। तो इन्होंने संक्षिप्त में लिखा है, तो उसमें जो है चैतन्य महाप्रभु का पूरा जीवन चरित्र लिखा हुआ है। तो ऐसे बताया था कि ऐसे तीन लोग हैं जिन्होंने काफी चैतन्य महाप्रभु का जीवन निकट से देखा है, वो है मुरारी गुप्ता। तो मुरारी गुप्ता जो है उन्होंने अपने कर्चे यानी जो है नोट्स बनाए थे उन्होंने बचपन में चैतन्य महाप्रभु के अलग अलग लीलाओं का, तो उसमें से कुछ संग्रह वगैरह ये करके लोचनदास ठाकुर ने जो है ये चैतन्य मंगल लिखा था। बोलो श्री लोचनदास ठाकुर तिरुभाव महामहोत्सव की, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, सुप्रपात की। हरे कृष्णा। किसी को कोई टीका है, प्रश्न है तो कर सकते हैं।